मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजू उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजू उनके सतत केवल ज्ञान बोले भगवान महावीर स्वामी के आचार्य कुंद कुंद स्वामी के आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के हम लोगों ने पिछले दिनों एक बात अपने मन में बहुत अच्छे से समझ ली है कि यदि क्रम क्रम से हम अपना जीवन अच्छा बनाते हैं तो एक दिन हम अपने जीवन को तीर्थंकर की हैसियत का भी बना सकते हैं। और यदि हम प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावनाओं का निरंतर अभ्यास करते हैं तो हमारे भीतर वह अच्छाई उद्घाटित हो सकती है। हमें अच्छाइयाँ कहीं बाहर से नहीं लानी है, अच्छाइयाँ हमारे भीतर हैं। सिर्फ इतना है कि हम अपनी उन अच्छाइयों को या तो भूल गए हैं और या कि वे अच्छाइयाँ हमारी अपनी ही बुराइयों के नीचे दबी पड़ी हुई हैं। यदि हम बुराइयों को हटाते चले जाएं, तो अच्छाइयाँ हमारे भीतर अपने आप प्रकट होती चली जाएँ। हमने पिछले दिनों एक ऐसी दृष्टि की निर्मलता हासिल की है जिसमें कि हमें प्राणी मात्र के भीतर अपने जैसा ही आत्म तत्व दिखाई देने लगे। और जब अपने और प्राणी मात्र के भीतर आत्म तत्व दिखने लगता है, ऐसी दृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है, ऐसा श्रद्धान हमें हो जाता है, तब फिर प्राणी मात्र के प्रति कल्याण का भाव ही अपने मन में आता है। और जो जीव प्राणी मात्र के प्रति कल्याण का भाव रखता है, सबके आत्मद्रव्य को परमात्म तक ले जाने की कोई प्रक्रिया बताने का भाव जिसके भीतर हो जाता है, वही न तीर्थंकर बनता है। मैं भी अपने आत्म कल्याण की उस प्रक्रिया को हासिल करूं और प्राणी मात्र को भी अपने आत्म कल्याण की प्रक्रिया मालूम पड़े, मोक्ष का मार्ग मालूम पड़े, ऐसी जिसके भीतर ललक होती है, भावना होती है, उसका जीवन तो ऊंचा उठता ही है, उसके जीवन से प्राणी मात्र का कल्याण होता है। इसी को तो अपन तीर्थंकर बनना कहते हैं। और पहली भावना जो दर्शन विशुद्धि है वो यही है। फिर विनय संपन्नता, शील और व्रतों के प्रति अत्यंत उत्साह, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, शक्ति तस्त्याग, ये सारी बातें उसी में गर्भित हैं, उसी में शामिल हैं। एक चीज़ आने से सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि आगे आने वाले दिनों में जब अपन उत्तम क्षमा पर विचार करेंगे तो हमें आश्चर्य होगा कि अरे सारे धर्म इसी में आ गए। किसी भी एक धर्म को हम अपने जीवन में लाते हैं तो सारे धर्म आ जाते हैं, आपो आप आ जाते हैं इसी तरह। लेकिन मुख और गौण हम किसी को मुख्यता दे देते हैं उस भावना विशेष को, लेकिन उसमें सारी भावनाएं समन्वित होती हैं। दर्शन विशुद्धि भावना यदि है तो सारी भावनाएं उसके भीतर समाहित हैं, और भी कोई भावना हो षोडश कारण भावना में उसके साथ दर्शन विशुद्धि होना तो अनिवार्य ही है। इस तरह आज हम देखते हैं कि क्या अपने जीवन को हम तपस्या के द्वारा ऊंचा बना सकते हैं। तो आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि शक्ति तस्तप, यह भी हमारे जीवन को उतनी ही ऊंचाई देता है जिस ऊंचाई को तीर्थंकरों ने प्राप्त किया है। अब शक्ति तस्तप लिखा है तो इसके मायने क्या है, और ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से हम कर रहे हैं, ये उसकी विशेषता है। इतनी चीज़ों को हमें समझना है। आचार्य भगवंतों ने लिखा कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव बल और वीर, इन सब बातों का ध्यान रख करके जो तप किया जाए वो शक्ति तस्तप कहलाए। यथाशक्ति, यथाशक्ति में तो ये है कि अपन थोड़ी बेईमानी भी कर सकते हैं, नहीं हमारी तो इतना ही शक्ति है, कहते ऐसे नहीं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव बल और वीर, बल तो कहलाता है शरीर का और वीर कहलाती है आत्मा की सामर्थ्य। सो यहाँ से शुरू करें तो पहले नंबर इस बात पे विश्वास करके चलना पड़ेगा कि मेरी आत्मा की शक्ति तो अनंत है, इसलिए मुझे तप तो जितना बन सके उतना करना है, अधिक से अधिक करना, इसलिए बेईमानी का कोई अवसर नहीं आए। आत्मा की अनंत शक्ति का विचार पहले करना, फिर उसके बाद अपने शरीर का बल भी देख लेना। आत्मा की अनंत शक्ति होते हुए भी कमजोर शरीर होवे तो वो आत्मा की अनंत शक्ति अपना पूरा का पूरा प्रभाव दिखा नहीं पाती, जिसको अपन कहते कि प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। क्षमता कितनी है यह तो ठीक है, लेकिन संभावनाएं कितनी है, हमारे शरीर से हम कितना कर पाएंगे। शक्ति तो हमारे पास आत्मा में अनंत है, इसलिए कमजोर नहीं पड़ना है करने में, लेकिन जरा देख लेना है कि शरीर का बल कितना है। और द्रव्य क्षेत्र काल किस तरह का है, द्रव्य के मायने भी यही है कि हमें जैसा शरीर का बल मिला हुआ है और जिस काल में हम बैठे हुए हैं, जिस क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, और अपने परिणाम टटोल लेना कितने उत्साह से हम उस चीज़ को करें, यह भी आवश्यक है। कई बार हम बहुत बड़ा तप हाथ में ले लेते हैं और उसके प्रति उतना उत्साह नहीं होता, तो शरीर की शक्ति होते हुए भी हम उसे निर्वाह नहीं कर पाते। कई बार कई लोगों के शरीर में बहुत शक्ति होती है और अपनी आत्मा की अनंत बल पर भी उनको खूब विश्वास है कि मेरी आत्मा में अनंत शक्ति है, अच्छा शरीर भी बढ़िया है, लेकिन नेचर ऑफ प्लेजेंट, भोगवादी दृष्टिकोण अगर है तब तो कुछ नहीं होने वाला। तब भावों में क्या होना चाहिए वो भी महत्वपूर्ण है। तपस्या के लिए भाव कैसे होना चाहिए, भाव भोगवादी नहीं होनी चाहिए, भाव तो वैराग परक होना चाहिए। जिसके भाव वैराग परक हैं उसी के द्वारा तप शोभा देता है, अन्यथा फिर वो तप अगर भोगवादी दृष्टिकोण वाला कर रहा है तो उस तप के द्वारा वो क्या चाहेगा। अरे सामान्य रूप से समझने की बात है कि आज अच्छे बढ़िया उपवास कर लो, भ्याने मताई अच्छो हलवा बना के खुआ है, अब और क्या उसमें, बुंदेलखंडी में तो ऐसे ही कहते हैं, समझ में आया आपके है? कि आज उपवास किया लेकिन आकांक्षा क्या है, कल बढ़िया बढ़िया खाने मिलेगा, तो ये भोगवादी दृष्टिकोण हो गया कि नहीं। इसलिए भावों में क्या होना, भावों में हमेशा वैराग रहे, द्रव्य क्षेत्र काल की जैसी स्थिति है वो ध्यान में रहे, अपने शरीर का बल ध्यान में रहे, और सबसे बड़ी चीज मेरे आत्मा में तो अनंत शक्ति है, मैं चाहूं तो उसे प्रकट कर सकता हूं। और आत्मा की अनंत शक्ति इसी तपस्या के करने से प्रकट होती है। आत्मविश्वास जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे और तप करने का भाव आता है, और जैसे जैसे तप करते वैसे वैसे आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के मायने क्या है, आत्मा की अनंत शक्ति पर विश्वास होना, यही तो आत्मविश्वास। मैं कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास, मैं कर ही नहीं सकता, तब तो फिर आप कर भी सकते हो तो नहीं कर पाएंगे। मन हार गया, ऐसे हारे मन से कभी तपस्या नहीं हो सकती। और भौतिक सुखों को ही सब कुछ मानने वाले भावों से भी तपस्या नहीं हो सकती। इसलिए कहना पड़ा कि शक्ति तस तपः, शक्ति तस त्याग कल कहा था, शक्ति तस तप आज अपन इसको समझ रहे हैं। और कर्म क्षयार्थम तपते इति तपः, तप किसे कहेंगे? आपने तो कह दिया शक्ति तस तो समझ में आ गया, लेकिन तप किसे कहेंगे? धूप में बैठ जाने का नाम तप है क्या? क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि तपना, जैसे अपन किसी चीज को तपाते हैं, गर्म करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ऐसे ही कुछ तपना पड़ता होगा। नहीं, कर्म के क्षय के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो सब तप कहलाएगा। और समझ में आ जावे इसलिए इच्छा निरोधा तपा, जो हम अपने कर्मों के क्षय के लिए इच्छाओं का निरोध करते हैं उसका नाम है तप। अब इच्छाओं का निरोध कितने प्रकार से कर सकते हैं इसका उपाय भी आचार्यों ने बड़ा व्यवस्थित बताया। इच्छाओं का, हमें तो कोई इच्छा नहीं है ऐसा कहना बहुत आसान है, हो गया क्या इच्छाओं का निरोध? हमें तो कोई विशेष इच्छा नहीं। ये पता लगेगा कि 12 प्रकार के तप करने का कितना उत्साह है, उससे मालूम पड़ेगा कि आपको इच्छाओं के निरोध का जो उपाय है वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इच्छा के निरोध का उपाय ना करे कोई और ये कहे कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं है तो उसका वह तप नहीं माना जाएगा। और तीसरी चीज, एक पहले शक्ति तस तप और तप की परिभाषा समझ ली, और तीसरी चीज तपस्या के पीछे उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए। कर्म क्षय से समझ में ना आवे तो तीन चीजें लिखी आचार्य भगवंतों ने कि मन की चंचलता मिटे सो ही तप श्रेष्ठ है, मन के विकारी परिणाम हटें सो ही तप श्रेष्ठ है, और पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो सो ही तप श्रेष्ठ है। मन की चंचलता, मन की विकृति और पांचों इंद्रियों को जीतना, ये जो है तपस्या का फल होना चाहिए। उद्देश्य भी यही होना चाहिए और फल भी यही होना चाहिए। तपस्या बहुत सारी करी और मन की चंचलता नहीं गई, मन के विकार नहीं गए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं हुई, तो कहते वो तपस्या कार्यकारी नहीं है, वो जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाए, वो घाटे का सौदा है। करी तो तपस्या लेकिन उससे जैसा हमारा जीवन उज्जवल होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाएगा। ये कंडीशन है। रावण ने भी तपस्या करी थी, भारी विद्याएं सिद्ध करने के लिए तपस्या करना पड़ती, उपवास करना पड़ते हैं, उपवास किए रावण ने और तपस्या करी, लेकिन किसके लिए? मन की चंचलता रोकने के लिए, मन के विकारों को जीतने के लिए नहीं, इंद्री विजय के लिए। हाँ हाँ, इंद्री के विषय भी अच्छे मिले और मन में विकार कौन सा है? राम के ऊपर विजय प्राप्त हो, अपने ऊपर हो जावे, जो हो जाए तो काम ही हो जाए। दुनिया भर को जीत लूं, दुनिया भर के ऊपर मेरा साम्राज्य चले, ऐसी खोटी तपस्या करने वाले सैकड़ों लोग हैं संसार में, जो सारे संसार की भोग विलास सामग्री चाहने के लिए तपस्या करते हैं कि तपस्या करूंगा तो अपार सामग्री मिलेगी, तपस्या करूंगा तो सारे संसार को अपने वश में कर लूंगा, ऐसी सैकड़ों तपस्या करने वाले लोग, उससे कोई का जीवन ऊंचा नहीं उठता। इसलिए लिखना पड़ा कि मन की चंचलता मिटे, मन के विकार हटें और इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो सके, वही तपस्या श्रेष्ठ है। वो तपस्या 12 प्रकार से की जा सकती। जब भी अपन वो 12 प्रकार से तप करें तो ये ध्यान में रखें कि जो बातें मेरे जीवन में आनी चाहिए वे आई कि नहीं आई। जैसे दुकान पे तो बैठी और सुबह से शाम तक खूब ग्राहक भी आए और खूब माल बेचा, और फिर बाद में जब नफा नुकसान का हिसाब मिलाया तो नुकसान ज्यादा हुआ, नफा तो हुआ ही नहीं। तो बताओ ऐसी दुकानदारी कोई करेगा? दूसरे दिन बंद करके आ जाए घरे कि जी नहीं करना भैया दुकान। ऐसा ही तप के बारे में, अगर हमारे तप से हमारे जीवन में उज्ज्वलता आती है तो ही वो तप श्रेष्ठ है, अन्यथा वो तप ही ना कहलाएगा, वो तो सिर्फ अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण छीन। अगर हमारा उद्देश्य निर्मल नहीं है तो जो जो भी हम क्रिया करते हैं, व्रत नियम और तपस्या इत्यादि करते हैं, वो सारी तपस्या हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाएगी। अकेले शरीर को क्रश करने वाली तपस्या का हमारे यहाँ पर कोई महत्व नहीं। तपस्या से शरीर क्रश हो जावे तो हो जावे, लेकिन तपस्या का लक्ष्य शरीर को क्रश करना नहीं है। तपस्या का लक्ष्य तो मन की विकृतियों को क्रश करने के, मन के दोषों को हटाने के, दोषों से निवृत्ति करने के लिए, या कि मन की चंचलता को मिटाने और इंद्रियों को अपने काबू में रखने के लिए तपस्या है। एक बाबा जी थे, हम शायद ये सुना चुके हैं शायद प्रश्नोत्तर में, तो वो वैसे वाले बाबा जी थे, मांग करके खा भी लेते थे, पर बाबा जी थे। तो वो एक बार उनके मन में आया कि दाल बाटी खाई जाए, सबको ख्याल आ गया होगा। आ गया ख्याल? कोई बात नहीं, अपन सुन तो लें कम से कम। तो उनको दाल बाटी खाने का मन आया, तो उन्होंने मांगा, लोगों से दाल मांगी, आटा मांगा, और शुरू कर दी बनाना नदी के किनारे पर, नदी से थोड़ा हट करके, एकदम किनारे पर नहीं, थोड़ा हट करके। तो बनाई दाल बाटी, आग बाग में जैसी बनती हैं वैसी सब, और इतने बनाते बनाते में पानी हो गया खत्म लोटा का। अब क्या करें? अब एक मन कहे कि जी खा लो, फिर उतने नदी में से पानी पी लेंगे, दूसरा मन कहे कि पहले पानी भर लिया और फिर खा लेंगे। पर ये वाला मन ज़्यादा तेज था, क्योंकि बहुत दिन से इच्छा थी कि दाल बाटी खावें, अब इतनी भी नहीं रुक सके कि पानी भर के ले आए, नहीं खाई लो फिर पी लेंगे पानी बाद में। लेकिन बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी कशमकश के बाद उनने सोचा कि नहीं पानी तो पहले ले आए। लेकिन पानी लेने जब जा रहे थे बाबा जी, तो सैकड़ों दफे मन में यही बात आई कि खा लेते। और पानी भर के लाए बाबा जी, और मन बदल गया, और पानी में तो रखा ज्यों का त्यों वहीं के वहीं, और उठाई दाल बाटी और इकट्ठी करी और इतने जोर से फेंकी कि सीधी नदी में जा कर के गिरी। और फिर क्या किया, एक मुट्ठी राख उस पानी में डाली और चुपचाप पानी पी लिया और चले आगे। जो व्यक्ति देख रहा था उससे रहा नहीं गया, उसने कहा ये ऐसे बाबा जी, अरे बढ़िया से दाल बाटी बनाई थी, फिर पता नहीं क्या हो गया, पानी भर के भी ले आए थे, फिर फेंक दी, फिर पानी में राख डाली, फिर पी लिया। कहले बाबा जी, जी सब आपने किया क्यों? कहले ऐसा ही मानेगा। कहती कौन मानेगा? कहती भीतर बैठा हुआ वो मन, वो ऐसा ही मानेगा, मनमानी कर रहा था। मैं कह रहा था कि पानी भर के लाऊं तो 17 बार खा लो। अब चुप है, अब कुछ नहीं कहेगा, अब शांत है। नहीं मिली, अब करो क्या कर दो। हाँ, अगर मनमानी करते रहेंगे तो कभी तपस्या नहीं होने वाली। तपस्या के लिए भी मन पर विजय पानी पड़ेगी, और तपस्या से भी मन पर विजय होगी। दोनों ही चीजें हैं, मन को काबू में रख के ही तपस्या हो सकेगी, और तपस्या के फलस्वरूप ही मन काबू में होगा। साइमल्टेनियस होने वाली प्रक्रिया है। जैसे यथा यथा समायाति, अपन ने पहले समझा कि जैसे जैसे आत्म तत्व का बोध होता है वैसे वैसे विषयों से विरक्ति होती, और जैसे जैसे विषयों से विरक्ति होती वैसे वैसे आत्म संवित्त, वैसे वैसे आत्म तत्व का बोध। इसी भावना से तपस्या करनी चाहिए। तो एक चीज अपन को क्लियर हो गई कि तपस्या का उद्देश्य अपने मन को वश में करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना, अपने विकारों पर विजय प्राप्त करना। और हम क्रम क्रम से देखते चले जाएं, हम उपवास करते हैं, अनशन नाम का तप है। अर्थ यही है कि भोजन की इच्छा ना होना, अनेशन। अनशन के मायने लंघन नहीं है। 4 प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन है, लेकिन उसके साथ अंतरंग में कौन से परिणाम हैं? भोजन की इच्छा ही नहीं है। आज तो मेरी धर्म ध्यान और स्वाध्याय करने की खूब भावना है, सो दिन भर वो ही करूंगा, आज तो जो है भोजन का ना विकल्प है मन में, ना बनाने का, ना खाने का, ना दूसरे को खिलाने का भी। हम तो शांति से अपना आज धर्म ध्यान करेंगे। आज भोजन की इच्छा नहीं है, आज भोजन के प्रति विरक्ति है। ऐसे विरक्ति के साथ जो अनशन या उपवास जिसको कहते हैं वो किया जाए तो वही तप कहलाए। और वैसे वैसे सुबह से शाम तक कई लोगों को भोजन नहीं मिलता तो उनका वो अनशन थोड़ी कहलाए, वो तो लंघन कहलाएगी। लंघन और अनशन तप में क्या अंतर है? इतना ही अंतर है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा कर्मों का क्षय हो, परिणामों की निर्मलता हो, चित्त की चंचलता मिटे और इंद्रियों की चंचलता मिटे तो कहलाएगा वही तप। वही भोजन नहीं करना तप बन गया, और वही भोजन नहीं करना संसार का कारण बन सकता है, संक्लेश का कारण बन सकता। अहंकार और संक्लेश दोनों से रहित होना चाहिए तप, सात्विक तप होना चाहिए, तभी तप श्रेष्ठ है। अनशन के बाद रखा है कि भूख से कम खाना और ज्यादा कठिन। एक के बाद एक कठिन चीजें हैं। अनशन के बाद कठिन है ऊनोदर। सारा सामान सामने रखा है, सब खाया जा सकता है, लेकिन इतना ही लेऊंगा, दो ग्रास ही खाऊंगा। एक ग्रास सबसे उत्कृष्ट अवमोदरी है। और या कि पूरा भोजन करने में एक ग्रास कम खाया तब भी वो भी तप है। क्यों? उस एक ग्रास के बाद ही तृप्ति होती। एक और खाने की इच्छा थी लेकिन छोड़ दिया, नहीं खाएंगे, इच्छा का निरोध हो गया, तप हो गया। देखूं तो मेरा आत्मविश्वास कितना है इसके लिए, ये ओमोदरी है। या कि एक ग्रास लेकर के आ जावे। शुरू में जब हम लोग को दीक्षा दी थी आचार्य श्री ने 1981 में, तब इसी तरह की 12 तप करके देखना, एक एक दिन भले ही करो। तब जिस दिन एक ग्रास अकेला, और वो भी तय नहीं करेंगे, सारा सामान ज्यों का त्यों रखा, श्रावक बड़े प्रसन्न के कुछ नहीं निकाला आज तो, सब ले रहे, मजा है, कुछ भी नहीं निकालेंगे थाली में, और बस खड़े हुए पहले नंबर जो भी दिया जाएगा। एक अंजुली पानी दिया तो पानी पिया और बैठ गया, सबसे उत्कृष्ट। हाँ, ऐसे जैसे कि गरम तवा पर एक बूंद डालो तो छन्न हो जाती। हाँ, ऐसे ही लगता है। उस समय तवाचार्य श्री दिन भर पूछते थे, अब कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है, उपवास की अपेक्षा इसमें कैसा लगा? तो उपवास से कठिन है, कहते हाँ कठिन है। उपवास में तो ठीक है कि संकल्प ही कर लिया कि अब करने ही नहीं है, मन बना लिया पहले से ही, जाने ही नहीं, ने देखे ने भौंके, भोजन ही नहीं देखा, लेकिन भोजन सामने है और अंदर उदीर्णा हो गई क्षुधा वेदनी की, और एक ग्रास डालने से और उदीर्णा हो गई। उदीर्णा होने के बाद भी खाली वापिस लौट आओ और दिन भर शांत परिणाम रखो, समता भाव। वृत्ति परिसंख्यान तब कब होता है जब ऐसी अटपटी शर्त रख लेते हैं कि उस दिन आहार ना मिले। सबसे श्रेष्ठ वृत्ति परिसंख्यान वो कहलाता है। समय सागर जी महाराज ने ईसरी में वृत्ति, आचार्य श्री की परमिशन के बिना किसी को वृत्ति परिसंख्यान लेने का अभी तक प्रावधान नहीं है हम लोगों को। अभी सिर्फ दो लोगों को वृत्ति परिसंख्यान लेने का मिला, हमसे बड़े समय सागर जी महाराज और योग सागर जी महाराज, दो ही लोगों को। और वे एक जगह से लौटेंगे तो दूसरी जगह नहीं जाएंगे फिर। हाँ, ये दोनों ही जन, अभी आचार्य श्री और दो महाराज, बाकी किसी को नहीं। हम तो एक जगह से कुछ गड़बड़ हो गई तो लौट के दूसरे में चले गए, दूसरे में गड़बड़ हो गई तीसरे में चले गए, फिर तीसरे से लौटें तो घरे आ जाएं, मतलब मंदिर में आ जाए। अभी इतना ही है, वो तो एक से लौटे तो वापस। ये कठिन चीजें हैं। वृत्ति परिसंख्यान वो है जिसमें ऐसी अटपटी शर्त सोच ली, ठीक है आचार्य श्री कर रहे हैं तपस्या, कब तक चलेगी, एक महीने चलेगा अब तो ये मामला, और उसी बीच में दीक्षाएं दे दी। जब दीक्षाओं के बाद 10 लक्षण के बाद आचार्य श्री से पूछा कि महाराज इस बार तो आपने और पहली बार देखा कि ये 16 कारण वगैरह किए, बोले हाँ बड़ा काम करना था इसलिए मुझे स्वयं पहले ये तप करना आवश्यक है, दीक्षाएं देने का काम करना था इसलिए मुझे स्वयं पहले तप करना अनिवार्य था। ये कहलाता है परोपकार के लिए किया गया तप, जिससे कि परोपकार हो रहा, आत्मा का उपकार तो हो ही रहा है, अपने अपने आत्मा के उत्थान के लिए किया, अपने परिणामों की निर्मलता के लिए किया, लेकिन उससे दूसरे का भी उपकार हो। तो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से मैं तप करूं, आत्म कल्याण की भावना तो बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि नहीं तो आप एकदम उसके अर्थ वैसे ले लो, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आत्म कल्याण की भावना तो है ही, लेकिन इस तरह से करना जिससे कि उपकार हो। और निश्चित है कि जो आत्म कल्याण की भावना से करेगा उससे दूसरे का उपकार हुए बिना नहीं रहेगा, और जो दूसरे के उपकार की भावना से करेगा उससे भी आत्म कल्याण हुए बिना नहीं। ये दोनों चीजें जो है तपस्या के लिए ध्यान में रखने की हैं। तपस्या तो ऐसी है भैया जैसे कि हरा वाला आम लगा रहता ना, हरा आम तो खाओ तो खटमिटा लगता है, और रंग भी देखने में उतना अच्छा नहीं लगता, और दबाओ तो बड़ा कड़ा रहता, और पक जावे अगर तो पक जावे तो मीठा रस मिलता, दबाओ तो मुलायम हो जाता और देखने में बड़ा अच्छा दिखाई पड़ता। ऐसे ही तपस्या करने से जीवन में आती है सरसता, जीवन में आता है मुलायमपना। होती तो तपस्या कठोर है लेकिन जीवन हो जाता नरम। करते हैं कठोर तपस्या, जीवन होता नरम पर उज्जवल भी होता चला जाता और सरस भी होता चला जाता। जैसे कि आम पक करके सरस भी होता, उज्जवल भी हो जाता और मुलायम भी हो जाता, ऐसे ही तपस्या का भी फल है। इसलिए अपन को इस तपस्या को अपने कर्मों के क्षय के लिए और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से अगर करेंगे तो जीवन अवश्य अपना भी ऊंचा उठेगा। जिसकी जितनी सामर्थ्य हो द्रव क्षेत्र काल भाव और अपनी शक्ति को पहचान करके अवश्य जो है वो तप करना चाहिए। बोले आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि महाराज की जय।